ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में आप सभी अपनी एक रस स्थिति बनाने के लिए विशेष योग तपस्या भट्टी में आए हैं और उसका आधार कहें वो एकाग्रता ही है। मन और बुद्धि की एकाग्रता जितनी बढ़ती जाती है उतना स्थिति एक रस नेचुरल बन जाती है। एक रस स्थिति के लिए तो बाबा ने समय प्लस समय अनेक शिक्षाएं दी हैं और एकाग्रता का अभ्यास हम सब रोज करते हैं। वर्तमान समय दुनिया की जो परिस्थितियां हैं उसमें दो शक्तियां हर एक के पास होना आवश्यक है, वो है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। अगर मन और बुद्धि हलचल में होती है, एक रस नहीं होती, एकाग्र नहीं होती, तो परख भी नहीं सकते और निर्णय भी नहीं ले सकते। और जहां पर परख नहीं पाए वहां धोखा मिलता है, कहीं न कहीं दुख उठाना पड़ता है, कोई हिसाब किताब क्रिएट हो जाते बन जाते हैं। तो बाबा हम सब बच्चों को वर्तमान समय इस पर विशेष अटेंशन खिंचवाते हैं कि अपने चलते हुए संकल्पों को एक सेकेंड में ब्रेक देने का अभ्यास करो। एकाग्रता क्या है? क्या हमारे चलते हुए आंतरिक संकल्प उनकी गति उस पर हमारा कंट्रोल रहता है? अगर संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है तो वहां पर व्यर्थ मिक्स हो जाता है और व्यर्थ मिक्स होने के कारण सामने वाले को हम परख नहीं सकते। इसलिए संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाने की आवश्यकता है। हम जब योग अभ्यास में बैठते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर इस देहभान से अलग होते हैं तो संकल्पों की तरफ ध्यान जाता है। ये संकल्प जो चल रहे हैं, क्योंकि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति है, जो मन है वो एक स्थान पर होते हुए भी कहां कहां पर चला जाता है, किधर किधर भटक जाता है। बुद्धि उसको कहती भी है कि आवश्यकता नहीं है इधर जाने की अभी, लेकिन वो बुद्धि को भी दबा करके अपना राज्य चलाता है। इसलिए मन और बुद्धि आत्मा की ये दोनों बहुत बड़ी शक्ति हैं। हम सबको इस पर बहुत अटेंशन का पहरा देना है। जो संकल्प मेरे काम के नहीं हैं, जिन संकल्पों से हमारी उन्नति नहीं है, उन संकल्पों को उनके बहाव को रोकना और उनको समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करना, क्योंकि संकल्प तो पूरा कल्प ही चलते हैं, शून्य नहीं होते। निर्संकल्प समाधि भी नहीं होती। संकल्पों का कार्य ही है चलना, चाहे हम योगयुक्त स्थिति में बीज रूप स्थिति में भी स्थित होते हैं तो भी संकल्प शून्य नहीं होते। शून्य तो एक जड़ता है, संकल्प एक शक्ति है। हम अगर संकल्पों को शून्य की तरफ ले जाएं कि कोई संकल्प ही न चले, तो भी ये भी संकल्प चलता है कि कोई संकल्प ही न चले। इसलिए इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि ये संकल्प जो चल रहे हैं वो अनुभव के संकल्प हैं, एकाग्र संकल्प हैं, एक की याद के संकल्प हैं। कोई भी रिसर्च हुई उसमें आप सबने देखा होगा, रिसर्च करने वाले एकांत प्रिय, एकांत को बहुत चुनते हैं, एकांत के स्थान पर चले जाते हैं, और एकांत के साथ साथ वो मन और बुद्धि को एकाग्र करके बैठते हैं। जितनी किसी एक वस्तु पर इस पर रिसर्च करनी है उस पर एकाग्र कर लेते हैं मन बुद्धि को, तो रिजल्ट हमारे सामने ले आते हैं। एकाग्रता यहाँ शून्यता नहीं है, उस पर विचार है, उस पर चिंतन है, उसकी गहराई है, उसके बाद वो खोज होती है, नई इन्वेंशन निकलती है। लेकिन एकांत और एकाग्रता के आधार पर कोई नई इन्वेंशन निकल सकती है। क्या हम सब ने इस कोरोना काल में लॉकडाउन के अंदर इसका अभ्यास किया कि मन और बुद्धि एकदम एकाग्र हो जाएं? हलचल का वातावरण है, और मैं समझता हूं जिनका संसार समाचार से बहुत कनेक्शन रहा है, जिन्होंने बहुत कुछ न्यूज देखी होगी, उनके संकल्प एकाग्र नहीं हुए होंगे। हलचल चलती है, क्या होगा, कैसे होगा, आगे चलकर क्या होगा। जितना भय का वातावरण बना, जितने लोग भयभीत हुए हैं, उसका मूल कारण अगर आप देखेंगे तो अधिकतर समाचार सुनने वाले हुए हैं। और जिनको समाचार का कुछ पता भी नहीं था, उनको इस विषय में कोई भय नहीं लगा, वो निर्भय थे। कहेंगे ऐसे जगत में जब साइंस इतना प्रगति कर रही है, क्या ऐसा कोई स्थान है जहां पर कोई समाचार ही ना हो? मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताता हूं। थोड़े दिन पहले, डेढ़ दो मास पहले, मैं अपने लौकिक गांव की तरफ गया था। लौकिक गांव अभी भी यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में बहुत छोटा सा गांव है, देहात है, जहां पर खंभे हैं लाइट के, लेकिन लाइट नहीं है। कभी आ जाती है तो आती है, नहीं तो कोई लेते ही नहीं है। ऐसे छोटे गांव में जब मैं गया तो यहां से तो बहुत डायरेक्शंस हम लोगों को मिले थे, सोशल डिस्टेंस के थे, मास्क के थे, और परहेज करते हुए हम वहां पहुंचे थे। लेकिन गांव वालों को जब पता चला, क्योंकि कई साल के बाद मैं गया था, तो शाम के समय उनको मिलने के लिए गांव वालों ने बुलाया, तो सारा गांव इकट्ठा हो गया करके। लगभग मैं समझता हूँ जो भी गांव के लोग थे, छोटे बच्चे भी बहुत इकट्ठे हुए, माताएं इकट्ठी हो गई, भाई आ गए, पूरा आंगन पूरा गांव वालों से भर गया, और सब एक दूसरे के बाजू में ऐसे चिपक चिपक के बैठे थे। तो मेरे मुख से निकला कि आप लोग थोड़ा दूर दूर बैठो, सोशल डिस्टेंस की बात मैंने उनसे की। कहते क्यों, क्या हुआ है, क्यों दूर बैठेंगे? तो मैंने कहा आपको पता है कि एक बीमारी फैली है जो सोशल डिस्टेंस, दूर बैठने की, दूर रहने की, मास्क की बातें आ रही हैं। कहते क्या हुआ है, मुझे नहीं मालूम। इतने इनोसेंट रूप से वो बोल रहे थे, सब आके ऐसे बच्चे बैठ गए, परिवार वाले बैठ गए, हमने समाचार नहीं सुनते हो? कहते हमारे यहाँ तो टीवी नहीं है, रेडियो में कभी कभी सुन लेते हैं, लेकिन इसके विषय में हम लोगों को पता नहीं है। कभी बैंक वगैरह में जाना होता है तो वहां पर कहते हैं ये 10 रुपये का मास्क ले लो, पहन करके अंदर आना, बाकी और कुछ पता नहीं है। इतना एकदम निर्भय निश्चिंत, हमने कहा इतने सब मर रहे हैं आपको मालूम है, कहते मरते तो ऐसे भी है ना, लोग ऐसे नहीं मरते हैं क्या? संसार समाचार ने लोगों को बहुत हलचल में ले आया, जिनके पास नहीं भी था उनके पास भी भय ने बहुत ले आया। अगर हम सबको अपनी एकाग्रता का अभ्यास करना है, एक रस स्थिति बनानी है, जानकारी के हिसाब से समाचार होने चाहिए, लेकिन अधिक इनके चिंतन में जाने वाला, अधिक इस पर विचार करने वाला, जबकि बाबा ने हम सब बच्चों को एक सुंदर टाइटल दिया है, आप मेरे बच्चे त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानते हो, ये सृष्टि का अंत काल हम सबके सामने है, कलयुग के अंतिम दृश्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और कलयुग के अंत काल के समय हर क्षेत्र में अति होनी है, बाबा ने सुनाया है, बीमारियों की भी अति होगी, और कई बार ये महावाक्य उच्चारण किए हैं, जो डॉक्टर्स हैं साइंटिस्ट हैं जब उस बीमारी की दवाई खोज लेंगे तो नई बीमारी आ जाएगी। बहुत सारी बातें बाबा के महावाक्यों में स्पष्ट हैं, इस कलयुग के अंत की निशानियां, और ये अंतिम काल के अंदर जब हर क्षेत्र में अति होनी ही है, और अति में हमारी स्थिति एक रस रहे, हलचल में ना आए, उसके लिए हम सबको कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि अब समय अनुसार हम कोई भी बातों का विस्तार न करें, जो विस्तार है उस विस्तार को सार में समेटने का अभ्यास करें, उसके सार को देखें, इसके अंदर रहस्य क्या है, इसे आगे का दृश्य क्या होगा। जानकारी के हिसाब से जो आत्माएं विस्तार में नहीं जाती, बहुत सार स्वरूप में स्थित रहती हैं, वो एक रस रह सकती हैं, और विस्तार में चले गए, प्रश्नों की उलझन में चले गए, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, आगे क्या होगा, तो ये व्यर्थ की बहुत बड़ी क्यू लग जाएगी अंदर। और जिनके व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, बहुत अंदर अंदर व्यर्थ की क्यू लगी रहती है, कभी भी एकाग्र भी नहीं हो सकते और एक रस भी नहीं रह सकते। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को, बाबा के बच्चों को नॉलेज फुल त्रिकालदर्शी स्टेज में रहने की जरूरत है। बाबा हमारा साकार में भी ब्रह्मा बाबा अपनी एक रस अचल अडोल स्थिति बना करके सदा निश्चिंत बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह बने। कोई भी दुनिया की परिस्थितियां आई, यज्ञ के ऊपर भी आई, लेकिन बाबा ने अपनी स्थिति को हिलने नहीं दिया, अचल अडोल एक रस, उन पेपर्स की परवाह नहीं की। और एक ही लक्ष्य जो बाबा ने दिया कि बच्चे पेपर्स आना माना क्लास आगे बढ़ना, पेपर्स अच्छे स्टूडेंट्स पेपर से डरते और घबराते नहीं है, उसका आह्वान करते हैं कि आएगा तो हम इसको पास करके पार हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने इसी विधि से अपनी एक रस स्थिति बनाई, हलचल में नहीं आए, उसका अधिक वर्णन नहीं किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर कोई ने बाबा को सुनाया भी बाबा ऐसे ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं, इतनी ग्लानी करते हैं, इतने विरोध में विघ्न डालते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो बाबा बहुत मुस्करा के कहते थे बच्चे ये लोग निर्दोष हैं, इनका दोष नहीं है, इन किसका कार्य है, कौन करा रहा है, क्या होने वाला है, इसलिए इनको हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, तुम अपना हलचल में नहीं आओ, अपनी स्थिति को छोटी छोटी बातों में बिगाड़ो मत, ऐसे कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं। कोई भी नया ज्ञान, नई बातें, नए धर्म की स्थापना अगर कोई ने की, सामना करना पड़ा, बहुत विरोध हुए, करने का चैलेंज करते हैं पूरे संसार को बदल, और उसके लिए नया ज्ञान, नई धारणाएं, विचारधाराएं नया है। जो कुछ हम सब ने आज तक पढ़ा, जो समाज की पद्धति चलती रही है, उसकी अलग दिशा हम लोगों ने पकड़ी है। कलयुग के अंदर तरफ एक विकारों की आग लगी हुई है, जैसे विषय वैतरणी नदी है, उल्टी तरफ अगर बहाव के उल्टी दिशा में कोई को चलना हो तो मेहनत तो लगेगी। बहाव एक तरफ है और हम चल रहे हैं दूसरी तरफ, एक तरफ विकारों का फुल फोर्स है और हम कहते हैं हम इस विकारी दुनिया में रहते हुए संपूर्ण पावन निर्विकारी बनेंगे, तो क्या युद्ध और मेहनत नहीं लगेगी, विरोध नहीं होंगे, सामना नहीं करना पड़ेगा? और उसमें अगर हम हलचल में आ गए तो कभी तो बहुत उमंग और कभी एकदम सोडा वाटर, नशा ही उतर जाता है। ऐसे हो गया, ये हो गया, ये तो बहुत बड़ा पेपर आ गया, परिवार वाले विरोध करते, समाज वाले विरोध करते, यानी कभी भी उस विरोध में अपने आप को परेशान नहीं किया, बहुत हल्की रीति से उस बात को लिया, डगमग नहीं होने दिया, कुछ भी हो रहा हो। विरोध तो मैं समझता हूं किसी का भी आज दुनिया में अपने परिवार में नहीं होता है। बाबा के सामने तो कोई उदाहरण भी नहीं थे, अकेला सब बातों का सामना करना, और इतने बड़े बड़े कलंक, जो इतना सम्माननीय व्यक्ति, इतना उतित्व समाज के अंदर, जब लौकिक, जब भक्ति काल था उनका, गुरुओं के प्रति भावनाएं थी, भक्ति चरम सीमा पर थी, श्री नारायण के अनन्य भक्त, गीता पाठ करने वाले, गीता पाठी, दान पुण्य किए बिना कुछ खाते नहीं, लोग कितनी ऊंची नजर से देखते थे, धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व है। और शिव बाबा के आते ही लोगों ने, परिवार वालों ने, संबंधियों ने कितनी गाली देना शुरू कर दिया कि आप समझ सकते हो, वो इतिहास थोड़ा जो शुरुआत का इतिहास है, यज्ञ इतिहास 1936-37 आधा 38 तक, 38 तक ठीक रहा है, लेकिन जब आने वालों ने ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना शुरू किया, जब शुद्ध अन्न का प्रयोग किया, हर घर में झगड़े शुरू हो गए, छोटी छोटी बच्चियां, नई नई शादी, और बाबा ने जिन शादी कराई थी, अपनी बेटी की शादी मैंने एक मुखिया से कराई थी, निर्मल शांता दादी की, समाज का बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत धनाढ्य था, उसके घर में कराई थी, और ज्ञान लेते ही, निश्चय होते ही, धक से उसने परिवार को छोड़ा, पवित्र रहना है, शुद्ध अन्न खाना है, कुछ भी हो जाए नहीं खिलाएंगे, परिवार में नहीं बनेगा। आप समझ सकते हो 20 साल 19 साल 21 साल की बहनें पवित्रता का व्रत ले लें, शुद्ध अन्न का व्रत ले लें, कुछ भी हो परिवार में नहीं बनेगा, नहीं होगा, कितना विरोध हुआ, कितना सामना करना पड़ा। और बाबा का विरोध होता था, केवल उनका ही नहीं जिनके जो कर रहे थे, कि बाबा ये सब कहां से, शायद बाबा कलकत्ता से काला जादू सीख लिया है। बहुत लोग गालियां देते थे, विरोध करते थे, केस कर दिए, पिकेटिंग किया, क्या नहीं किया, लेकिन बाबा एकदम, बच्चे मैं इन बातों को नहीं जानता हूं, गा रहा है, इतना निश्चय बुद्धि बाबा का कार्य है, और नई सृष्टि की स्थापना के लिए सब वो है, बीच में मैं फंस गया हूं, लेकिन मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, कोई दोष नहीं। लोग कहते थे दाद केवल ये बात छोड़ दो, आपकी संस्था बहुत बढ़ जाएगी, बहुत आगे बढ़ोगे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इनको नहीं कह रहा हूं मैं प्रति वाला हूं, मैंने खुद गृहस्थ बनाया है, मैं कैसे कहूंगा कि गृह व्यवहार छोड़ दो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। लेकिन वो कहने वाला कह रहा और ये बच्चे मान रहे हैं उनकी, उसको पहचानो। बाबा ने पहचाना था, इसलिए कोई भी बात आई कि जब स्वयं भगवान इन बच्चों को कह करके नई सृष्टि की स्थापना करा रहा है और उसके लिए कुछ तो सहन करना पड़ेगा। बंत बेफिकर भाषा, एक रस अचल अडोल स्थिति में रहे, हिले नहीं कुछ भी हुआ, बच्चे पर यही दृष्टि रखी है, सब निर्दोष है, इनका दोष नहीं है, ये परवश है, इनको पता नहीं है। ये स्थिति को एक रस बनाने का बहुत अच्छा साधन बाबा ने अपनाया, ऐसी स्थिति बना करके एकाग्रता का अभ्यास किया, वो कर्मातीत स्थिति को पाए, पहुंच गए। और इतनी जल्दी 33 साल के पुरुषार्थ में, 37 में स्थापना हुई है, 69 में बाबा व्यक्त हो गए। ये 32-33 साल का जो उनका गहरा पुरुषार्थ रहा, वो एकाग्रता और एक रस स्थिति का ही पुरुषार्थ था। ऐसी एकाग्रता कि बाबा अगर बैठ गए ऐसे, तो जैसे कोई भी संसार की चीज उनको आकर्षित नहीं कर सकती, बिल्कुल एक टिक एक की याद में मगन, एक प्यार में समाये हुए, एक को ही दिल में बसा के रखा। और उनको हमारी दादियों ने, मम्मा ने, दादी प्रकाशमणि जी ने, दादी जानकी जी ने, दीदी जी ने, उनको संपूर्ण रीति से फॉलो किया। पेपर बहुत आए बाबा के अव्यक्त होने के बाद, तो और भी संस्था के ऊपर पेपर आए, बातें आई, लेकिन इसका रक्षक, इसका रखवाला, गाइड स्वयं भगवान है। इस निश्चय के आधार से निश्चिंत और एक रस स्थिति बना ली। सब थोड़ी सी बातें आती हैं परिवार के बीच में, थोड़ा सा भी विरोध होता है तो कितना हलचल में आ जाते, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, ये करें वो करें, स्थिति खुद की भी बिगड़ती है और सबकी बिगाड़ देते हैं, जिसको सुनाते हैं उसको भी बिगाड़ देते हैं। लेकिन बाबा ने कहीं वर्णन तक भी नहीं किया, किसी को कहा भी नहीं ऐसे ऐसे हो रहा है, बच्चे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तक बाबा के महावाक्य चलते थे, बच्चे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा वही, ये निंदक नहीं, ये हमारे सच्चे मित्र है, हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। निंदक नियरे राखी, निंदा करने वाले को नजदीक रखना चाहिए, वो हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। बहुत बाबा इन लोगों को जितना विरोध किया, कहते थे बच्चे ये विरोध करते हैं, आज गाली देते हैं, कल ही देखना गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे, क्योंकि अभी पहचाना नहीं है। जब पहचान जाएंगे कि परमात्मा का ये कार्य चल रहा है, उन्होंने की ये श्रीमत है, उनको ये सब फॉलो कर रहे हैं, तो अपने आप सब समझ जाएंगे और पश्चाताप करेंगे। इस स्थिति के आधार से, इस निश्चय के आधार से बाबा ने निश्चिंत स्थिति बना ली, एक रस स्थिति बना ली, हिलना डुलना बंद हो गया। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को एक रस स्थिति बनाने के लिए अपने निश्चय के फाउंडेशन पर बहुत ध्यान देना है। स्वयं में निश्चय है, बाबा में निश्चय है, और इस कल्याणकारी ड्रामा में निश्चय है कि इस कल्याणकारी ड्रामा की कोई भी सीन मेरा कल्याण नहीं कर सकती, उसमें कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। अगर लगता है प्रैक्टिकल, पर्दा दिखाई देता है कि ये अच्छा नहीं है, बुराई का है, बाबा कहता है बच्चे उस बुराई के अंदर भी कुछ अच्छाई समाई हुई है। ऐसी स्थिति कि इस बुराई में भी कुछ अच्छाई है, सोचना क्या अच्छाई होगी। मान लो कोई हमारे सामने ऐसा दृश्य आता है जो लगता है तो बाबा के बच्चों के आगे नहीं होना चाहिए, हमने क्या ऐसा गलत किया है जो हमारे सामने पेपर आया, बाबा कहता बच्चे वो तुमको अनुभवी बनाने के लिए आया है, वो तुमको आगे बढ़ाने के लिए आया है, और कुछ सिखा करके जाएगा, इसलिए वो भी अच्छा ही है। अब इतना ड्रामा के ज्ञान में निश्चय हो ये परिस्थिति जो आई, मान लो आज मेरे आगे शरीर की पेपर आ गया, कई प्रकार के पेपर आते हैं। कलयुग में हिसाब किताब चुकतो करने के लिए तीन प्रकार के पेपर हर एक के सामने आते हैं और आ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने द्वापर युग से देह विमान में आकर के बहुत सारे विकर्म और पाप कर्म किए हैं। बॉडी कॉन्शियस में आके कितने लोगों को परेशान किया, दुख दिया होगा। ये समय वापस जाने का है, हिसाब किताब चुक तो करने का है। तो किन किन रूपों से हमारे आगे हिसाब किताब आएंगे, विचार किया है कभी? एक तो शरीर की भोगना के रूप में आएंगे, जो हमारी दादियों के सामने भी आ रहे हैं आए। शरीर का कोई ऐसा कड़ा हिसाब किताब जो हमने पिछले जन्मों में ऐसा कुछ किया है, परेशान कर रहा है शरीर, कर्जा उतर रहा है। मानसिक डिस्टरबेंस तनाव के रूप में, दिमाग काम नहीं करेगा समय पर, कहीं न कहीं कोई भटकती हुई आत्माओं का वार हो जाएगा। हिसाब किताब उनके साथ भी था, वो भी आएगा सामने। संबंध जहां जहां हमारे जुड़े, संबंध जहां भी बने हैं, किस आधार से संबंध बने हैं, वो भी हमारे कोई पिछले कर्मों का हिसाब किताब, जिसके कारण उनके समीप हम आए हैं, उनके घर में आए हैं, उनके समीप आए हैं, संबंध में आए हैं, वहां ही हिसाब किताब है, इसलिए आए हैं। उस संबंधों में भी कुछ न कुछ टकराव होंगे, मनमुटाव होंगे, दूरियां होंगी, कभी अच्छा संबंध चलेगा और कभी नहीं भी अच्छा होगा, क्योंकि वो चुक तो होने का समय चल रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा कहीं न कहीं अचानक अकाली मृत्यु हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, पढ़ाते हो, लिखाते हो, बड़ा करते हो और अचानक शरीर छोड़ देता है। कई स्थानों पर ऐसे ऐसे मैंने दृश्य देखे हैं, अपने बीके परिवार में भी। इतनी हलचल पैदा कर देते हैं, माँ बाप दादा दादी बैठे हैं और बच्चा जिसको उन्होंने अच्छी तरह से जन्म दिया, पालना दी, पढ़ाया, खर्चे किए, 20-21 साल का हुआ, जब कमाने लायक बना, अचानक कुछ कारण बना शरीर छोड़ गया। हलचल एकदम डिस्टर्ब कर देता है परिवार को, ज्ञान योग अलग हो जाता है, उसमें था ऐसा पेपर, और चलो खुद ज्ञान योग से उस पेपर को पार भी कर ले, उसके संबंधी, उसके समाज वाले लोग उसको और डिस्टर्ब करके, देखा तुम कहता मेरे को भगवान मिला है, भगवान ने तुम्हारी कोई रक्षा नहीं की, कोई मदद नहीं की, और बेचारे को परेशान कर देते। उसकी स्थिति अगर ज्ञान योग का फाउंडेशन पक्का नहीं है तो डिस्टर्ब हो जाता है, पढ़ाई छोड़ देता है, योग छोड़ देता है, भगवान में भी शंका पैदा हो जाती। लौकिक में बाबा का एक अनुभव हम लोगों ने पढ़ा था कि बाबा की अपने गुरुओं में इतनी भावना, इतनी श्रद्धा थी, एक बार कोई बाबा के घर में किसी की, छोटे बच्चे की मौत हो गई, बाबा भी कहता है मैंने भी भगवान को बहुत गालियां दी, साकार में लौकिक की बात है कि तुमने मेरी रक्षा नहीं की, मैं तुमको इतना याद करता हूं, तुम्हारे लिए मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, आपकी क्या मदद मिली। आजकल दुनिया के अंदर ऐसे ही ज्ञान मार्ग में चलने वाले भी इतने निश्चय बुद्धि भी कई कई बार ऐसे छोटे छोटे पेपर्स में हिल जाते हैं। अगर ज्ञान को यथार्थ समझा है, ड्रामा को यथार्थ रीति से जीवन में उतारा है, तो सब दृश्य ऐसे देखते हैं जैसे बिल्कुल अलग से साक्षी दृष्टा स्थिति में। इन आत्माओं का ये पार्ट है, इतने समय का ही पार्ट है, और इनका कुछ पिछले जन्मों का कर्जा था जो आया, पालना लिया, हम सबके खर्चे हुए, उसकी संभाल की, और अचानक चला गया, हमारा कर्जा पूरा हो गया। अब ये ज्ञान बाबा ने दिया, ज्ञान और योग का जिस आत्मा ने फाउंडेशन पक्का किया है, वो एक रस स्थिति में रह सकता है, नहीं तो छोटी छोटी बातें उसको इतना डगमग कर देती हैं, हलचल में आ जाता है, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझ जाता है, कहाँ एकाग्रता है, कहाँ योग है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को इस ज्ञान और योग का, निश्चय का, अनुभव का, सत्य मार्ग ही है, सत्यता का, अथॉरिटी बनकर के अनुभव करना है, ये फाउंडेशन है। और ये फाउंडेशन जिस आत्मा ने पहले से पक्का किया हुआ है, पेपर आएंगे कहेगा नथिंग टू, पार हो जाएगा, न खुद हलचल में आएंगे न दूसरों को हलचल में लाएंगे। कहीं भी सूक्ष्म रगे, समझना इस बात को, किसी देहधारी में, चाहे स्वयं की देह में, चाहे संबंध में बोलता है, रगे जुड़ी हुई हैं, वो आत्मा को कभी भी एक रस रहने नहीं देंगी। कोई भी रस दैहिक आकर्षण का, देखने का, सुनने का, खाने पीने का, घूमने फिरने का, कोई भी रस अगर आत्मा को आकर्षित कर रहा है तो वो एक रस नहीं रहने देगा। रस स्थिति बनी है हम सबको, तो देखना भी रस मुझ आत्मा की किसी इंद्री को आकर्षित तो नहीं कर रहा है। इतना रस है लोगों को बोलने का रस, जैसे बोलना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, पर चिंतन शुरू हो जाता है, ऐसे करता है, वैसे कैसे, इसने किया। अब वो बातें अगर किसी के कान में जा रहे, क्या वो हमको अंदर अंदर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, में नहीं लाएंगी? इसलिए बाबा अपने बच्चों की स्थिति को एक रस बनाना चाहता है। कुछ भी हो जाए बच्चे, इन बातों के चक्कर में अभी नहीं जाओ, इनसे निकल जाओ। केवल एक ही रहे, मुझे स्वदर्शन करना है। स्वदर्शन करो, स्वचिंतन करो, शुभ चिंतक बनो, शुभ भावनाएं रखो। अगर अपनी स्थिति को एक रस बनाना है तो कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, हम अपने चिंतन में रहें। बाबा ने हमें स्व का अच्छा कराया है। बच्चे देखो अपने आप को, जब आप अपने अनादि स्वरूप में हो, जब आप परम में स्थित हो, कहीं भी किसी देहधारी के साथ कोई बंधन नहीं है, आत्मा बिल्कुल निर्बंधन घर में, परम धाम घर में रहती है। फिर जन्म में भी आई तो अपने स्वरूप को देखो, कितना सत्व प्रधान जन्म है, प्रकृति सत्व, संबंध सत्व प्रधान है, वैभव सब सुख देने वाले प्रकृति। स्वदर्शन करो, आत्मा बहुत सकारात्मक सोचते हुए जब नीचे भी उतरती है तो गिरावट को न सोच करके, द्वापर युग शुरू हुआ तो हमने अपनी ही पूजा शुरू कर दी, एक तरफ अव्यभिचारी पूजा बाबा की शिव बाबा की, और फिर हमने अपनी ही मूर्तियां बना करके पूजा शुरू कर दी। किसकी पूजा शुरू हुई उसका भी बाबा कई बार ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। बच्चे सतयुग के अंदर जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण गद्दी संभालते हैं तो उनको एक साक्षात्कार हो जाता है विष्णु चतुर्भुज का, सुना होगा आपने बात। जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो माँ को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है, और उस परिवार के अंदर वही सिंबल रखकर गद्दी चलती है श्री नारायण की। शुरू होते ही जब वो पूज्य आत्माएं पुजारी बनती हैं तो वही मंदिर बना करके पूजा शुरू करते हैं। पहले शिव बाबा की भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, और उसके बाद विष्णु चतुर्भुज की भक्ति, देवी देवताओं की भक्ति करते करते आत्मा नीचे आई है। वही आत्माएं हम सब हैं। स्वदर्शन करो, जिनको भगवान ने चुना, जिनको भगवान ने अपना बनाया, वो कौन सी आत्माएं हैं? ऐसे थोड़ी चुन लिया आप सबको, निकाल लिया कहीं से, ये आदि काल वाली आत्माएं हैं, परम पवित्र आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, जो जन्म लेते लेते नीचे उतरी हैं, भक्ति काल में भी नंबर वन पार्ट बजाया है, उन आत्माओं को भगवान ने चुन करके अपना बच्चा बनाया है। जब ये स्वदर्शन करेंगे तो हम क्यों दूसरों का दर्शन करें, चिंतन करें, ये ऐसा है, वो ऐसा, ये धर्म ऐसा, वो धर्म ऐसा, वो तो सब आए हुए पीछे ही हैं, बाद में आए हैं, अपनी तमो प्रधान स्टेज में आए हैं। जब हम आत्माएं उतरते रजो में आई हैं, तमो में आई हैं, तब इस ज्ञान को थोड़ा चिंतन करो, बड़ा मस्त ज्ञान है, बहुत ऊंची स्थिति बनाने वाला है। और जिसने इस ज्ञान को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार लिया है, चिंतन में ले आया, तीन चीजें हैं ज्ञान की, स्टेज की। एक है सुनना, सुन लेते हैं मुरली, रोज सुनते हैं, सभी ने सुनी है, कोई छोड़ा नहीं है इस लॉकडाउन में भी, लेकिन सुनना। और समाने के बाद स्वरूप में कैसे आए, सुन लिया स्वरूप में नहीं अगर आए तो स्थिति एक रस नहीं बन सकती है। और जिनके स्वरूप में आ गई, चिंतन में आ गई, उनकी दृष्टि से, उनकी वाइब्रेशन से, उनके बोलने से अपने आप सेवा होती है। सेवा के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम सुनते हैं, समाते हैं और उसका स्वरूप बन करके रहते हैं कि बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया, घर का ज्ञान दिया, कर्मों का ज्ञान दिया, ड्रामा का ज्ञान दिया, वापस घर जाने का ज्ञान मिला, एक ज्ञान मिला, और ज्ञान का जिसने अच्छा चिंतन कर लिया, उसका स्वरूप बन गया, उसकी स्थिति एक रस बन जाएगी। नहीं तो कितनी भी मेहनत करते रहो, कोई छोटी सी बात आएगी, जैसे थोड़ा सा तूफान आता है, अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है मकान गिरा देता है। फाउंडेशन मजबूत है आएगा, 7-8 डिग्री भी तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ नहीं होता, फाउंडेशन पक्का है। हम सब बाबा के बच्चों को भट्टियां इसलिए कराई जाती हैं कि हमारा ज्ञान और योग का फाउंडेशन बहुत अच्छा मजबूत हो। कुछ भी बातें आए, परिवार से आए, समाज से आए, लौकिक से आए, अलौकिक से आए, आएंगी तो जरूर, जो हिसाब किताब बने उनको चुप तो करने का समय है। बहुत प्यार से बाबा की याद से बात आई है, पूरी हो जाएगी। सिर्फ हमारी दादी जी, जानकी दादी जी कहती थी 3 गोली रोज खाया करो। दवाई खाने की तो आदत होती है लोगों को, कोई बीमारी होती पर से गोली खा लेते, लेकिन अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पहली गोली धैर्यता की है। धैर्यता, तुरंत उतावले नहीं हो जाओ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने किया, उसने किया, क्वेश्चन में क्वेश्चन, एक के बाद एक, खुद भी हिलते दूसरों को हिला देते। धैर्यता से सुन लो बात को, समझो, सोचो, विचार करो, फिर उसका उत्तर दो, ठीक हो जाएगा सब। पहली गोली धैर्यता की है। दूसरी गोली बाबा कहता शांति, शांत स्वरूप में आत्मा हूं, जो बातें हमें अशांत करने वाली हैं उनका मुझे चिंतन नहीं करना है, अपने शांत स्वरूप स्थिति में रहो, रोज अभ्यास करो, मैं शांति के सागर का बच्चा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझे शांति संदेश देना है, शांति का दूत हूं। ये अगर गोली खाएंगे तो बहुत शांत स्वरूप स्थिति, एकाग्र चित्त एक रस बना देगी। तीसरी गोली है प्रेम की। प्रेम एक बहुत बड़ा गुण है। हम सब प्रभु प्रेम के दीवाने हैं, किसी इंसान के नहीं है। बाबा के प्यार में समाना सीखो, आपस में हम एक दूसरे के प्रति इतना सच्चा रूहानी प्यार, जिसके अंदर जरा भी दैहिक आकर्षण की बदबू न हो, कहीं पर भी ये न दिखाई दे ये जो बहन भाई बात कर रहे हैं, ये जो आपस में मिल रहे हैं, इनका कोई अलग प्रकार का संबंध लगता है। सबसे ज्यादा स्थिति में जो गिरावट आती है वो दैहिक आकर्षण के कारण आती है। आत्मा अगर उस आकर्षण से सच्चा प्रेम करना जानती है, निस्वार्थ प्रेम, सच्चा प्रेम, उन्नति वाला आत्मिक प्रेम, वहां हलचल नहीं होती, स्थिति एक रस रहती है। तो हम सब बाबा के बच्चों को अपनी एक रस स्थिति बनाने के लिए रोज धैर्यता, शांति और प्रेम, ये 3 गोलियां खानी पड़ेंगी। बहुत प्रेम स्वरूप स्थिति अगर है तो टकराव नहीं होते, और जहां टकराव हो गए, वैर भावनाएं, बदला लेने की भावनाएं, वहां कभी भी एकाग्र चित नहीं रह सकते, जिसका भी किसी के साथ हो। 2 चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं। एक आत्मा किसी पर बहुत अधिक प्रभावित हो जाए, उसकी छवि, उसका चेहरा, उसके कर्तव्य, उसके गुण, उसका स्नेह आत्मा के नैनों में घूमने लगे, प्रभावित, कहीं एकाग्र नहीं हो सकता है। बैठेगा बाबा की याद में, वो देहधारी आत्मा उसके सामने चक्कर लगाती रहेगी, बैठा यहां है और घूम रहा है किसी देहधारी की तरफ। किसी आत्मा का प्रभाव मेरे ऊपर तो नहीं पड़ा हुआ है चेक करने की जरूरत है। हैं गुणवान आत्माएं हैं, विशेषताएं हैं, स्नेही हैं, सहयोगी हैं, मददगार हैं, लेकिन बाबा ने इनको ये विशेषता दी है, मुझे क्या चाहिए इनसे। अगर कोई भी आत्मा मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं कर पा रही है, किसी भी देहधारी का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े, आप देखो आपकी स्थिति बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, एक रस हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। और अगर किसी से भी वैर विरोध नफरत घृणा बदला लेने की भावना आ गई, दुश्मनी ले ली, बैठो योग में, वही सामने घूमता रहेगा, कैसे उससे इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया, बुद्धि वहां भटक जाएगी। इसलिए सब बाबा के बच्चों को इस समय संगम पर किसी भी देहधारी से नफरत नहीं करनी है, घृणा नहीं करनी है, और किसी पर भी प्रभावित नहीं होना है। बाबा पर प्रभावित हैं हम सब, एक बाबा हमारा संसार है, बाबा को जिसने अपना संसार बनाया है। संसार में दो ही चीजें हैं, एक व्यक्ति है, एक वस्तु है। कोई वस्तु भी मुझ आत्मा को आकर्षित नहीं कर पा सकती। बाबा कई बार कहते हैं, एक स्लोगन आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे सेंटर्स पर रहता है, इच्छाएं कम कर दो समस्याएं कम हो जाएंगी। जब तक इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति हमने नहीं बनाई है, वो स्थिति बनती है प्राप्ति संपन्न स्वरूप में रहने से। जितना प्राप्तियों का चिंतन करते हो, संगम पर हमें क्या क्या मिला है, बाबा ने हमें अविनाशी प्राप्तियां कराई हैं, कोई भी हद की कामना नहीं है, मान हो, शान हो, साधन मिले, सुविधाएं मिले, मुझे क्या चाहिए, बाबा आपने मुझे सब कुछ दे दिया, मैं आत्मा तृप्त हूं, भरपूर हूं, कोई हद की कामनाएं मुझे खींचे नहीं। जहां हद की कामनाएं व्यक्ति को खींचती हैं, वहां पर एकाग्रता नहीं है और एकरस स्थिति नहीं रह सकती। अब बहुत सूक्ष्म चेकिंग करने की जरूरत है, गहराई में जाना, सुनना नहीं सिर्फ, कि क्या मेरी कामनाएं सीमित हैं, संतुष्ट हूं मैं, भरपूर हूं, या अभी भी उनके पीछे भाग रहा हूं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसके पास ये है, मेरे पास भी हो। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे संगम युग पर तृप्त भरपूर इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहो, फिर आपकी स्थिति एक रस बन जाएगी। चाहनाएं इच्छाएं व्यक्ति को भटका रही हैं, और जहां वो नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा आपका प्यार मिला, आप संसार मेरे बन गए, आपसे मुझे सब कुछ मिल गया, न मान चाहिए, न शान चाहिए, न पद चाहिए, न पोजीशन चाहिए, जहां वो सब समाप्त हो गई, वहां एक रस स्थिति अपने आप बन जाती है। और जहां उसकी कामनाएं हैं, जहां उसकी इच्छाएं हैं, वो नहीं मिलती है चीजें, भागते हैं उसके पीछे, मृग तृष्णा के समान भटक रहे हैं, एक रस स्थिति नहीं बनती। तो हम सब इस पर विचार करें, बहुत गहरी बातें हैं ये बाबा की मुरलियों का सार मैं बता रहा हूं आपको। अगर इसका चिंतन करके उसका स्वरूप बनेंगे, तो वर्तमान समय की जो आवश्यकता है कि वातावरण बहुत हलचल का है, और हलचले कम नहीं होनी है कलयुग में, ये तो बढ़नी ही है। उस हलचलों के वातावरण में रहते हुए, जैसे दिखाते हैं ना विष्णु जी सागर की हलचल के बीच में आराम से शेष सैया पर लेटे हुए, टांग पर टांग चढ़ाए हुए, सांप उनके लिए छत्र छाया बने हुए हैं, उनको दस्ते नहीं है, उनको परेशान नहीं करते, वो विष्णु की स्टेज है, जो अपने मंथन में मगन है, विश्राम में है लेटा हुआ, लेकिन कोई भी हलचल, सागर की हलचल उसको प्रभावित नहीं करती। हम सब इस संसार सागर में रहते, हलचलों के बीच में रहते, अपनी ऐसी अचल एक रस अवस्था बनाएं, और उसके लिए ज्ञान और योग का अच्छा चिंतन करें, मनन करें, और विकारों रूपी सांपों को सैया बना दें, कोई डिस्टर्ब हमें न करे, इनको सहयोगी बनाओ, परिवर्तन करो इनके रूप का। जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को यूज जरूर करो, लेकिन वो नेगेटिव रूप में जो हमें पतित बना रही हैं उसकी बजाय आत्मा पावन बन जाए। तो ये बाबा की मुरलियों की अच्छी स्टडी करने से, अच्छा चिंतन करने से, ज्ञान और योग का फाउंडेशन हमारी स्थिति को एकरस बनाएगा और एकाग्र चित्त स्थिति, मन और बुद्धि से हम बाबा के साथ का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति।
Oh, me.